आगे सबक देखिए भाई, وَإِنَّمَا عَدَلَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَمَّا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْجَمْهُورِ مِنْ أَنَّ الْمُعْرَبَ مَخْتَلَفَ آخِرُهُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ تَدْوِينِ عِلْمِ النَّحْوِ أَنْ يَعْرِفَ بِهِ أَحْوَالَ أَوَاخِرِ الْكَلِمَةِ فِي التَّرْكِيبِ مَنْ لَمْ يَتَتَبَّعْ لُغَةَ الْعَرَبِ وَلَمْ يَعْرِفْ أَحْكَامَهَا بِالسِّمَاعِ مِنْهُمْ. गुज़श्ता सबक में शारह जामी ने आपको बतलाया था कि साहिब मुफस्सल यानी अल्लामा ज़मख़शरी और साहिब काफिया यानी अल्लामा इब्ने हाजिब के दरमियान इख्तिलाफ है अस्माए मादूदा के बारे में, वो अस्मा जो तरकीब में वाक़े न हों, जिनको शुमार किया जा रहा है, यानी जो भी इसम है जो तरकीब में वाक़े नहीं है उसके बारे में इन दोनों में इख्तिलाफ है. साहिब मुफस्सल के नजदीक ये मुअरब हैं जबकि ये मबनीउल असल के साथ इनकी मुशाबहत न हो, क्योंकि ये जो अस्माए मादूदा हैं जिनकी मबनीउल असल के साथ मुशाबहत नहीं, इनमें सलाहियत है कि ये जब भी तरकीब में आएंगे तो इन पर एराब आ जाएगा. तो ये एराब की सलाहियत रखते हैं कि इन पर एराब आ जाए, अगरचे फिलहाल एराब नहीं लेकिन इनमें सलाहियत तो है, तो लिहाजा ये मुअरब हैं. जबकि साहिब काफिया वो फरमाते हैं कि सिर्फ सलाहियत काफी नहीं मुअरब के लिए, बल्कि तरकीब में वाक़े हो और वो तरकीब भी ऐसी हो जिसमें उसका आमिल भी मौजूद हो, यानी वो बिलफेल एराब का मुस्तहिक बन जाए. अब चाहे आप एराब पढ़ें या ना पढ़ें, वो एराब का मुस्तहिक बन चुका है तो अब उसको मुअरब कहेंगे. जैसे जाराबा जैदुन, ये जैदुन फाइल है जाराबा का, अब ये तरकीब में भी वाक़े है और नीज इसके साथ इसका आमिल यानी जाराबा भी मौजूद है, अब इसको मुअरब कहेंगे चाहे आप एराब पढ़ें या ना पढ़ें. आप चाहे कहें जाराबा जैदुन तो भी ये मुअरब है, और आप चाहें एराब न पढ़ें, जाराबा जैद आप वक्फ कर दें आखिर में, रफा न पढ़ें भाई, कोई एराब न पढ़ें तो भी इसको क्या कहेंगे, मुअरब. क्यों कहेंगे मुअरब? क्योंकि ये बिलफेल एराब का मुस्तहिक हो चुका है, ये तरकीब में भी वाक़े है और उसमें इसका आमिल भी मौजूद और नीज मबनीउल असल के साथ इसकी मुशाबहत भी नहीं है. अब आप चाहे एराब पढ़ें या ना पढ़ें, आपके पढ़ने ना पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये एराब का मुस्तहिक हो चुका है. और जो भी ऐसा कलीमा हो जो तरकीब में भी वाक़े हो और उसका आमिल भी मौजूद हो, वह एराब का मुस्तहिक हो जाता है, उसको मुअरब कहते हैं. चुनाचे इसीलिए साहिब काफिया ने जो मुअरब की तारीफ की उसमें मुरक्कब की कैद लगाई कि वो तरकीब में वाक़े हो अपने आमिल के साथ, ताकि अस्माए मादूदा इस तारीफ से निकल जाए, क्योंकि साहिब काफिया के नजदीक अस्माए मादूदा मुअरब नहीं है, जबकि साहिब मुफस्सल के नजदीक के अस्माए मादूदा मुअरब हैं. इसीलिए उन्होंने मुअरब की जो तारीफ की उसके अंदर उन्होंने मुरक्कब की कैद जिक्र नहीं की भाई. और इसी में मुअरब लुगवी का जिक्र भी आया था. मुअरब लुगवी उसको कहेंगे जिस पर बाकायदा बिल फेल एराब आ जाए. मुअरब देखो इसमें मफूल का सिगा है, अरब युअरिबु एराब का क्या मतलब है, एराब देना. तो मुअरब किसको कहेंगे, जिसको एराब दिया गया हो. तो जब एक लफ्ज को बिलफेल एराब दे दिया गया, जैसे जाराबा जैदुन, अब ये जैद को एराब दे दिया गया, और अगर मैं पढ़ूं जाराबा जैद तो देखो मैंने वक्फ किया, एराब नहीं दिया, तो जब एराब दे दिया तो उस वक्त ये मुअरब लुगवी है, यानी इसको एराब दिया गया है. इसमें मफूल मुअरब का क्या माना, जिसको एराब दिया जाए, तो अरबी जुबान के एतबार से मुअरब उसको कहते हैं जिसको बाकायदा एराब दे दिया गया हो. जैसे मजरूब उसको कहते हैं जिस पर बाकायदा जरब वाक़े हो चुकी है, तो अरबी जुबान के एतबार से मुअरब उसको कहेंगे जिसको बाकायदा एराब दे दिया गया हो. तो जब मैं कहूंगा जराबा जैदुन, अब इस लफ्ज जैद को बाकायदा एराब दे दिया गया, तो यह लुगवी मुअरब है. यह क्या है? और अगर मैं इस पर वक्फ करूं जराबा जैद तो ये तो मैंने एराब नहीं दिया, तो ये मुअरब लुगवी नहीं है, इसको एराब नहीं दिया गया. तो मुअरब लुगवी के अंदर तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है, معرب لغوی کسے کہتے ہیں؟ جب ایک لفظ پر باقاعدہ اعراب آ جائے، وہ تو بال اتفاق سب کے نزدیک معرب ہی ہے، اس میں تو جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا، اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. جب ایک لفظ کو باقاعدہ اعراب دے دیا گیا، ضربہ زیدن، زیدن پر باقاعدہ میں نے اعراب پڑھ دیا، پھر تو اس میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے، پھر تو بال اتفاق سب کے نزدیک یہ کیا ہے؟ معرب ہی ہے. لیکن اختلاف جو ہے دونوں کا، صاحب کافیہ اور صاحب مفصل کا، وہ معرب اصطلاحی میں ہے، اس معرب لغوی میں اختلاف نہیں ہے. یہ تو ہے ہی معرب، صاحب کافیہ کے نزدیک بھی معرب ہے، اس کو اعراب دیا گیا ہے، صاحب مفصل کے نزدیک بھی اس کو اعراب دیا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ معرب. اس میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہاں اختلاف کس میں ہے؟ معرب اصطلاحی میں. اصطلاح میں معرب کسے کہیں گے؟ تو صاحب مفصل کے نزدیک اکیلا لفظ زید ہو، اس کو بھی معرب کہیں گے، کیونکہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں، اور اس میں صلاحیت ہے، یہ جب بھی ترکیب میں واقع ہوگا اس پر کیا آ سکتا ہے؟ اعراب آ سکتا ہے. تو اکیلے زید کو بھی معرب کہیں گے. اور جبکہ صاحب کافیہ کے نزدیک اکیلے زید کو، زید عمر بکر، اس کو معرب نہیں کہیں گے، کیونکہ ان کے نزدیک صرف صلاحیت کافی نہیں ہے کہ اس میں اعراب کی صلاحیت ہو کلمہ کے اندر، بلکہ باقاعدہ وہ ترکیب میں واقع ہو، اور ترکیب بھی ایسی ہو جس میں اس کا عامل بھی ہو. تو صاحب کافیہ کے نزدیک صرف صلاحیت کافی نہیں، بلکہ بالفعل وہ اعراب کا مستحق بن جائے، اس کو معرب کہیں گے. اور اکیلا زید یہ مستحق اعراب ہے؟ اس وقت آپ اس پر اعراب پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، اس وقت یہ مستحق اعراب ہے ہی نہیں. اس کے لیے اس کو ترکیب میں بھی واقع کرنا پڑے گا، اور ترکیب بھی ایسی ہونی چاہیے جس میں اس کا عامل بھی موجود ہو، جیسے ضرب زیدن. اب یہ جو زید ہے یہ صاحب کافیہ کے نزدیک معرب ہے. آپ زیدن پر رفع پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ اعراب کا مستحق ہو چکا ہے، کیونکہ ترکیب میں بھی واقع ہے اور عامل بھی ساتھ ہے جو کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ رفع کا. تو آپ ضرب زیدن پڑھیں تو بھی معرب، ضرب زید پڑھیں دال پر وقف کر لیں تو بھی معرب ہے. تو معلوم ہوا ضرب زید جب آپ اس پر وقف کرتے ہیں تو بھی صاحب کافیہ کے نزدیک یہ معرب ہے. بھائی صاحب کافیہ کے، صاحب مفصل کے نزدیک تو ہے ہی، صاحب کافیہ کے نزدیک بھی اب یہ معرب ہے، حالانکہ آپ اس پر اعراب نہیں پڑھ رہے. معلوم ہوا صاحب کافیہ کے نزدیک بھی بالفعل اعراب کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اعراب کا بالفعل مستحق ہونا ہی کافی ہے. بات سمجھ میں آ گئی. معلوم ہوا صاحب مفصل ان کے نزدیک بھی اعراب بالقوا کا اعتبار ہے، اور صاحب کافیہ کے نزدیک بھی اعراب بالقوا کا اعتبار ہے. اکیلا لفظ زید صاحب مفصل کے نزدیک یہ کیا ہے؟ معرب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اعراب بالقوا ہے، یعنی اس میں اعراب کی صلاحیت ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اور صاحب کافیہ کے نزدیک بھی ضرب زید، میں نے وقف کر دیا دال پر، میں نے اعراب نہیں پڑھا، ان کے نزدیک پھر بھی یہ زید کیا ہے؟ یہ معرب ہے. یعنی معلوم ہوا صاحب کافیہ کے نزدیک بھی اعراب بالقوا کا اعتبار ہے، اس زید پر رفع پڑھنا ضروری نہیں، آپ وقت بھی کر دیں پھر بھی یہ اعراب کا مستحق ہو چکا ہے. تو صاحب کافیہ بھی اعراب بالقوا کا اعتبار کرتے ہیں اور اسی کو معرب اصطلاحی کہتے ہیں، اور صاحب مفصل بھی اعراب بالقوا کا اعتبار کرتے ہیں، لیکن دونوں کے اعراب بالقوا میں فرق ہے. صاحب مفصل اس اعراب بالقوا کا اعتبار کرتے ہیں جو بالفعل اعراب سے بہت دور ہے، جو بالفعل اعراب سے، زید اکیلا لفظ ہے، صاحب مفصل کیا فرماتے ہیں؟ اس میں صلاحیت ہے یا نہیں اعراب کی؟ تو اس میں اعراب کی صلاحیت ہے، تو وہ اعراب القوا کا اعتبار کر رہے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ زید معرب ہے. لیکن یہ بالفعل اعراب سے بہت دور ہے، اس پر بالفعل زیدن آپ پڑھ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ پہلے اس کو کس میں لانا پڑے گا؟ ترکیب میں، کیونکہ رفع نصب خود نہیں آتے، تو اس کو ترکیب میں لانا پڑے گا، اور ترکیب بھی ایسی ہو جس میں اس کا عامل بھی آئے جو اس پر رفع یا نصب یا جر کا باقاعدہ تقاضا کرے، پھر اس کے بعد اس پر بالفعل اعراب آ سکے گا. تو معلوم ہوا صاحب مفصل اعراب بالقوا کا اعتبار کر رہے ہیں، مثلا لفظ زید میں ہے، لیکن یہ اعراب بالقوا اعراب بالفعل سے بہت بعید ہے، کیونکہ اس کے لیے اس کو ترکیب میں بھی لانا پڑے گا اور اس کے عامل کو بھی ساتھ لانا پڑے گا. اور صاحب کافیہ وہ بھی اعراب بالقوا کا اعتبار کرتے ہیں، ضرب زید، دیکھو زید پر میں نے وقف کیا لیکن پھر بھی صاحب کافیہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرب کہتے ہیں. تو وہ بھی اعراب بالقوا کا اعتبار کرتے ہیں، لیکن یہ وہ اعراب بالقوا ہے جو اعراب بالفعل کے بہت قریب ہے، اعراب بالفعل کے. آپ نے صرف اعراب پڑھا نہیں ہے, باقی اعراب کا تو یہ مستحق ہو چکا ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں اس پر. ضربا زیدن, اب یہ بالفعل اعراب آ گیا. توجہ ہے, ضربا زید بالفعل میں نے اعراب پڑھا, بالفعل پڑھا اعراب نہیں, لیکن یہ بالفعل کے قریب ہے. ضربا زیدن میں پڑھ بھی سکتا ہوں. تو صاحب کافیہ بھی کس اعراب کا اعتبار کر رہے ہیں؟ اعراب القوا کا. صاحب مفصل بھی کس کا اعتبار کر رہے ہیں؟ اعراب القوا. لیکن صاحب مفصل اس اعراب القوا کا اعتبار کر رہے ہیں جو بالفعل اعراب سے بہت دور ہے. اس اکیلے زید پر بالفعل اعراب آ سکتا ہے؟ نہیں, یہ بہت دور ہے, اس کو ترکیب میں بھی لانا پڑے گا, اس کے ساتھ عامل کو بھی لانا پڑے گا. اور صاحب کافیہ بھی اعراب بالقوا کا اعتبار کرتے ہیں, لیکن یہ بالقوا اعراب اعراب بالفعل کے بہت قریب ہے. صرف آپ نے پڑھا نہیں ہے, ورنہ ترکیب میں بھی ہے, عامل بھی ہے, سب کچھ موجود ہے, صرف پڑھنا باقی ہے. چنانچہ اس کی پھر مثال بھی ذکر کی, لم تعرب الکلمۃ, کلمہ کو اعراب نہیں دیا گیا. وہی معربۃ, اس حال میں کہ یہ معرب ہے. مثلا ایک جملہ لکھا ہوا تھا, ضرب زید, آپ نے صرف یہ پڑھا ضرب زید, آپ نے دال پر وقف کر لیا, تو اس موقع پر کہا جاتا ہے لم تعرب الکلمۃ, اس کلمہ کو اعراب نہیں دیا گیا, یعنی اس پر اعراب نہیں پڑھا گیا. وہی معربۃ, حالانکہ یہ تو معرب ہے, اس پر کیا پڑھنا چاہیے تھا؟ رفع. دیکھا, اعراب نہیں دیا گیا, حالانکہ یہ تو کیا ہے؟ معرب ہے. معلوم ہوا اعراب بالفعل ضروری نہیں معرب میں, بلکہ اعراب بالقوا ہی کافی ہے صاحب کافیہ کے نزدیک بھی. بھائی, اور میں نے بتایا اس کو مخاطب کا صیغہ بھی پڑھ سکتے ہیں, لم تعرب الکلمہ, آپ نے کلمہ کو اعراب نہیں دیا, آپ نے ضرب زید پڑھا, آپ کو ضرب زیدن پڑھنا چاہیے تھا, لیکن آپ نے کیا پڑھا ہے؟ ضرب زید. تو آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ لم تعرب الکلمہ, آپ نے تو اس کلمے کو اعراب نہیں دیا. وہی معربۃ, حالانکہ یہ تو معرب ہے. بھائی, بات سمجھ میں آ گئی؟ جی, اب آئیے آج کے سبق پر. کہتے ہیں وَإِنَّمَا عَدَلَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَمَّا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْجَمْهُورِ مِنْ أَنَّ الْمُعْرَبَ مَخْتَلَفَ آخِرُهُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ. یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں صاحب جامی بھائی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب کافیہ نے جمہور کی تعریف چھوڑ کر معرب کی نئی تعریف کیوں کی؟ یاد رکھو, جمہور جو ہے وہ معرب کی تعریف کرتے ہیں, یہ اسی سطر میں, یہ جو میں نے ابھی پڑھا, وَإِنَّمَا عَدَلَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَمَّا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْجَمْهُورِ مِنْ أَنَّ الْمُعْرَبَ مَخْتَلَفَ آخِرُهُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ. جمہور کے نزدیک معرب کی یہ تعریف مشہور ہے, المعرب مختلف آخره باختلاف العوامل. معرب وہ اسم ہے جس کا آخر بدلتا ہو عوامل کے بدلنے سے. معرب کسے کہتے ہیں؟ جس کا آخر بدلتا ہو عوامل کے بدلنے سے. یہ جمہور تعریف کرتے ہیں معرب کی, لیکن صاحب کافیہ نے بالکل ایک نئی تعریف کر دی. انہوں نے کیا فرمایا؟ المعرب المرکب الذي لم يشبه مبني الاصل. معرب وہ مرکب ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو, جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو. تو ایک بالکل نئی تعریف کر دی, جمہور کی تعریف کو چھوڑ دیا. تو سوال پیدا ہوتا ہے, صاحب کافیہ نے جمہور کی تعریف کو کیوں چھوڑا, معرب کی نئی تعریف کیوں کی؟ تو اس کا جواب ذکر کرنے لگے ہیں. حاصل جواب یہ ہے کہ صاحب جامی آپ کو بتلائیں گے کہ جمہور کی تعریف اگر کی جائے معرب کی, تو پھر اس سے دور لازم آتا ہے. کیا لازم آتا ہے؟ دور لازم آتا ہے. دور, دور کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف لکھ لیجئے بھئی, آپ کے کام آئے گی. الدور, لکھئے بھئی, الدور ہوا توقف الشیء, الدور ہوا توقف الشیء علی ما یتوقف علیہ. الدور ہوا توقف الشیء علی ما یتوقف علیہ. لکھ لیا. دیکھیے بھائی, دور اسے کہتے ہیں کہ ایک شے ایسی چیز پر موقوف ہو جائے کہ وہ چیز خود اس پہلی چیز پر موقوف ہے. توجہ ہے, دور کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک چیز کا جاننا وہ موقوف ہو جائے دوسری چیز پر, और वो दूसरी चीज ऐसी है कि उसका जानना इस पहली चीज पर मौकूफ है। ये पहली चीज आपको तब समझ में आएगी जब आपको वो दूसरी चीज समझ में आ जाए, और वो दूसरी चीज वो तो वैसे समझ में आ नहीं सकती, वो भी आपको तब समझ में आएगी जब ये पहली चीज आपको समझ में आ जाए, और इसमें फिर एक चीज भी समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि पहली चीज को जानने के लिए दूसरी का जानना जरूरी, तो पहली चीज दूसरी पर मौकूफ हुई, और दूसरी चीज को जानने के लिए पहली चीज का जानना जरूरी, तो वो पहली चीज पर मौकूफ हुई, तो एक का भी पता नहीं चल सकता, एक का भी पता नहीं चल सकता। इसको दौर कहते हैं भाई, दौर भाई। जैसे आपने किसी से पूछा कि जैद का घर कहां है, उसने कहा अमर के घर के सामने, अमर के घर के सामने। मालूम हुआ जैद के घर की मारिफत आपको तब होगी जब आपको अमर के घर का पता चल जाए। तवज्जो है, मालूम हुआ जैद के घर का तब पता चलेगा जब अमर के घर का पता चल जाए। अब आपने उसे पूछा अच्छा अमर का घर कहां है, उसने कहा अमर का घर जैद के घर के सामने है। मालूम हुआ अमर के घर का आपको तब पता चलेगा जब आपको किसका पता चल जाए, जैद के घर का। अब देखो इसमें एक का भी पता नहीं चल सकता। जैद के घर का पता कब चलेगा, जब अमर के घर का पता चल जाए। तो जैद के घर का जानना मौकूफ हुआ किस पर, अमर के घर के, यूं कहो जैद के घर की मारिफत मौकूफ हुई किस पर, अमर के घर की मारिफत पर। और अमर के घर की मारिफत वो किस पर मौकूफ है, जैद के घर की मारिफत पर। तो जैद के घर का पता तब चलेगा जब अमर के घर का पता चले, और अमर के घर का तब पता चलेगा जब जैद के घर का पता चले। इसमें एक कभी पता नहीं चल सकता भाई, एक कभी पता नहीं चल सकता। जैद के घर का पता चलेगा आपको तब चलेगा जब आपको अमर के घर का पता चले। अब आप अमर के घर को जाने की कोशिश करते हैं तो उसकी तारीफ क्या की गई, वो जो जैद के घर के सामने, भाई जैद के घर के बारे में ही तो हम पूछ रहे थे, अब अमर के घर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा जी जैद के घर के सामने। मालूम हुआ अमर के घर का तब पता चलेगा जब जैद के घर का पता चले। तो दोनों एक दूसरे पर मौकूफ हो गए, और इसको दौर कहते हैं। तवक्कुफ शैई, एक शय का मौकूफ होना, अलामा उस शय पर, यह तवक्कफ अलैहि जो इस शय पर मौकूफ है, पहली शय पर। तो एक शय उस चीज पर मौकूफ हो जाए कि उसका जानना इस पहली शय पर मौकूफ हो, इसको दौर कहते हैं। तो साहिब जामी आपको बतलाएंगे कि साहिब काफिया ने मुअरब की नई तारीफ इसलिए की क्योंकि जमहूर की तारीफ अगर की जाए तो दौर लाजिम आता है। क्या लाजिम आता है, दौर लाजिम आता है। किस तरह, किस तरह, देखो भाई जरा अपनी कापी पर लिखें भाई, कापी पर लिखें, कापी पर लिखिए भाई, लिखिए मुअरब की मारिफत, मुअरब की मारिफत, सतर के शुरू में लिखें मुअरब की मारिफत। लिख लिया, हां, इससे आप तीन चार लफ्जों के बराबर जगह खाली छोड़ दें और आगे लिखें इख्तिलाफ आखिर की मारिफत, इख्तिलाफ आखिर की मारिफत, इख्तिलाफ आखिर की मारिफत। लिख लिया जी, सतर के शुरू में आपने लिखा मुअरब की मारिफत, और आखिर में आपने लिखा कुछ फासले पर इख्तिलाफ आखिर की मारिफत। भाई मुअरब की मारिफत जरूरी है, जब मुअरब की मारिफत होगी तो आपको इख्तिलाफ आखिर की भी मारिफत हो जाएगी कि लफ्जों के आखिर को किस तरह बदलते हैं कलाम अरब में। मुअरब की मारिफत आपको होगी, आपको मुअरब की पहचान हो जाएगी, तो फिर क्या हासिल होगा, आपको इख्तिलाफ आखिर का की मारिफत हो जाएगी कि किस तरह अरबी जुबान में कलिमों के आखिर बदलते हैं, कहां पर रफा पढ़ना है, कहां नसब पढ़ना है, कहां जर पढ़ना है। तो इख्तिलाफ आखिर की पहचान, तवज्जो है, जरा इस पे नजर रखें जो मैंने लिखवाया, इख्तिलाफ आखिर की मारिफत यानी इख्तिलाफ आखिर की पहचान, ये मौकूफ हो गई किस पर, मुअरब की मारिफत पर। मुअरब की मारिफत और उसकी पहचान होगी तो आपको इख्तिलाफ आखिर की भी पहचान होगी। मालूम हुआ इख्तिलाफ आखिर की मारिफत यह मौकूफ है, और मुअरब की तारीफ क्या है, मौकूफुन अलैह। तो लिहाजा मालूम हुआ आपको इख्तिलाफ आखिर से पहले मुअरब का पता होना चाहिए, मुअरब का पहले पता चलेगा तो फिर इख्तिलाफ आखिर का भी आपको पता चलेगा। तो इख्तिलाफ आखिर मौकूफ हुआ किस पर, मुअरब की मारिफत पर। अब मुअरब की मारिफत आप हासिल करना चाहते हैं तो मुअरब की तारीफ की जाती है, जमहूर क्या तारीफ करते हैं मुअरब की, अल मुअरब मुख्तलफ आखिर हो बिख्तिलाफ अल अवामिल, मुअरब वो इस्म है कि जिसका आखिर इख्तिलाफ अवामिल से बदलता हो। मालूम हुआ मुअरब की पहचान भी, मौरब की पहचान आपको तब होगी जब आपको इख्तिलाफ आखिर की पहचान हो जाए। तारीफ पे नजर है, मौरब की क्या तारीफ की, मौरब किसे कहते हैं, जिसका आखिर बदलता हो, मालूम जिसका आखिर बदलता हो, इसका इख्तिलाफ आखिर का आपको पता चलेगा तो मौरब आपको समझ में आएगा। तो देखो मौरब की मारिफत मालूम हुआ, मौकूफ हो गई किस पर, इख्तिलाफ आखिर की मारिफत पर। तारीफ के अंदर आ गया ना, मौरब की तारीफ क्या कर दी, मख्तलफ आखिर हो, मालूम हुआ मौरब आपको तब पता चलेगा जब आपको किसकी मारिफत हो, इख्तिलाफ आखिर की मारिफत हो। तवज्जो है, अब फिर जरा जो मैंने लिखवाया उस पर नजर रखें, इख्तिलाफ आखिर की मारिफत यह मौकूफ है किस पर, मौरब की मारिफत पर, और मौरब की मारिफत किस पर मौकूफ हो गई, इख्तिलाफ आखिर की मारिफत पर मौकूफ हो गई, जो आपने तारीफ की कि मख्तलफ आखिर हो इख्तिलाफ अवामिल। तवज्जो है, तो यह दौर लाजिम आया, इख्तिलाफ आखिर की मारिफत मौकूफ हो गई मौरब की मारिफत पर, और मौरब की मारिफत मौकूफ हो गई किस पर, इख्तिलाफ आखिर की मारिफत पर। तो यह दोनों एक दूसरे पर मौकूफ हो गए, दोनों में से एक का भी पता नहीं चलेगा, जैसे जैद का घर अमर के सामने है, अमर का घर जैद के सामने है, तो दोनों में से एक का भी पता नहीं चलेगा। इख्तिलाफ आखिर की मारिफत किस पर मौकूफ, मौरब की मारिफत पर, और मौरब की मारिफत किस पर मौकूफ, इख्तिलाफ आखिर पर। कापी पर नजर है, इख्तिलाफ आखिर की मारिफत किस पर मौकूफ, मौरब की मारिफत पर, और मौरब की मारिफत किस पर मौकूफ हो गई, इख्तिलाफ आखिर की मारिफत पर। तो यह दौर लाजिम आया, तो इस दौर से बचने के लिए, इस दौर से बचने के लिए साहिब काफिया ने मौरब की अलग तारीफ कर दी कि मौरब की मारिफत इख्तिलाफ आखिर से ताके ना हो, इख्तिलाफ आखिर से मौरब की मारिफत होगी फिर तो दौर लाजिम आएगा। इख्तिलाफ आखिर की मारिफत किससे हो रही है, मौरब की मारिफत से, और मौरब की मारिफत भी किससे हो जाए, इख्तिलाफ आखिर की मारिफत से, तो दौर लाजिम आएगा। लिहाजा मौरब की मारिफत इख्तिलाफ आखिर के साथ नहीं होनी चाहिए, उसकी अलग तारीफ करनी चाहिए। चुनाचे अलग तारीफ कर दी कि मौरब जो है वो इसम है जो तरकीब में वाक हो और मबनी असल के मुशाबे न हो। अब मौरब की मारिफत इख्तिलाफ आखिर पर मौकूफ नहीं, क्योंकि उसकी तारीफ हमने इख्तिलाफ आखिर से की नहीं है, उसकी तारीफ तो हमने क्या की है, जो तरकीब में वाकई हो और मबनी असल के मुशाबे ना हो। भाई अब आपको मुआरब की मारिफत हासिल हो जाएगी, और जब इसकी मारिफत हासिल हो जाएगी तो फिर इख्तिलाफ आखिर की मारिफत भी हासिल हो जाएगी। बात समझ में आ गई अच्छी तरह। यहां एक और बात याद रखिए, साहिब जामी जो तकरीर करेंगे, मैंने मुख्तसर आसान लफ्जों में आपको मसला समझा दिया कि किस तरह दौर लाजिम आता है। साहिब जामी जरा लंबी तकरीर करेंगे, इल्मी अंदाज में, इल्मी रंग के अंदर गहरी बात करेंगे, तो उसमें वो आपको यह भी बतलाएंगे, वो आपको यह भी बतलाएंगे कि ये जो इल्म नहव है इसका मकसद यह है, इल्म नहव का मकसद यह है कि इसके जरिए इंसान इख्तिलाफ आखिर को पहचान ले। यानी इल्म नहव का बड़ा मकसद यह है कि आप इख्तिलाफ आखिर को पहचान लें, ताकि आपको पता चले कहां रफा पढ़ते हैं, कहां नसब पढ़ते हैं, कहां जर पढ़ते हैं। मौरब की आपको पहचान हो जाए, मबनी की आपको पहचान हो जाए, तो आपको पता लग जाए कि मबनी को नहीं बदलना, मौरब को बदलना है, उसके आखिर को बदलना है। तो इल्म नहव की बड़ी गरज क्या है, अहम गरज क्या है, कि इख्तिलाफ आखिर का पता चल जाए। इख्तिलाफ तवज्जो है, मुल्ला जामी रहमुल्ला जो तकरीर करेंगे वो मैं समझा रहा हूं, नफ्स मसला आप समझ गए, मैंने तकरीर मुकम्मल कर ली, अब जो वो बयान करेंगे पूरी तफसील वो भी समझ लें कि मुला जामी रहमुल्ला क्या फरमाते हैं कि इल्म नहव की गरज क्या है, मकसद क्या है, यह इल्म सीखने का, यह पढ़ने का मकसद क्या है, कि तालिब इल्म को क्या पता चल जाए, इख्तिलाफ आखिर का पता चल जाए कि कौन से कलिमे हैं जिनका आखिर अरबी जुबान में बदलता है, तरकीब में जब वाक हो कहां रफा पढ़ते हैं, कहां नसब पढ़ते हैं, कहां जर पढ़ते हैं, यह तालिब इल्म को पता चल जाए। बात समझ में आ रही है, इल्म नहव की गरज क्या है, कि इख्तिलाफ आखिर का पता चल जाए। अब याद रखो, ये जो इख्तिलाफ आखिर का पता चलता है इसके दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप कलाम अरब का ततब्बु करें और उसको उसका सिमा करें, अरबों से उनका कलाम सुने, अरबों के कलाम को पढ़ें, और इस तरह आपको पता चल जाएगा कि अरब किस लफ्ज के आखिर को बदलते हैं, किस लफ्ज के आखिर को नहीं बदलते, कौन सा लफ्ज मौरब है, कौन सा लफ्ज मौरब नहीं, और मौरब में कहां पर रफा पढ़ते हैं, कहां नसब पढ़ते हैं, कहां जर पढ़ते हैं। यह किस तरह पता चलेगा, कलाम अरब का ततब्बु करें, ततब्बु का माना कोशिश करना, जुस्तुजू करना, मेहनत करना, तो आप कलाम अरब में कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, जो काबिल एतमाद अरब कलाम है उसको पढ़ते हैं, मसलन अहादीस का मुताला करते हैं, फिर इसी तरह कुरान में आप देखते हैं, इसी तरह जो कदीम अरब शुआरा का कलाम है आप उसको पढ़ते हैं और उनमें गौर करते हैं और देखते हैं कि इन सब के अंदर हम देख रहे हैं फाइल मरफू होता है, मफूल क्या होता है, मनसूब होता है और मुजाफिल मजरूर होता है। यह सारी चीजें आप वहां से अखज करते हैं, कहां से? कलाम अरब से। किसे? तो वो शख्स जो कलाम अरब से इन चीजों को सीखता है उसको इल्म नहव की कोई हाजत नहीं, उसको इल्म नहव की कोई हाजत नहीं। आपको नहव की एक भी किताब खोलकर देखने की जरूरत नहीं। आपको अगर अल्लाह ने जहन दिया है, आप कलाम अरब में जस्तुजू करें, गौर करें और उसके जरिए आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी जो उलमाए नहव ने नहव की किताबों में लिखी हैं। तो ये एक तरीका है। तो नहव का मकसद क्या? इख्तिलाफ आखिर को पहचानना। तवज्जो है, नहव का मकसद क्या है कि तरकीब में जब लफ्ज आ जाए तो उनका आखिर किस तरह बदलता है उसको जानना। तो इस इख्तिलाफ आखिर को जानने के दो तरीके हैं। एक ये कि जो सीखना चाहता है वो कलाम अरब की में जस्तुजू करे, उसका ततब्बो करे, उसमें मेहनत और कोशिश करे और अरबों से उनके कलाम को सुने कि वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा तरीका यह है जो ये ततब्बो नहीं कर सकता, जो अरबों से सिमा नहीं कर सकता, तो फिर वो इल्म नहव की किताब खोलता है और वहां उसको मिल जाता है कि फाइल मरफू होता है, मफूल मंसूब होता है और मुजाफिल मजरूर, सारी नहव की बहसें उसको मिल जाती हैं। तो नहव का मकसद क्या है? इख्तिलाफ आखिर का पता चलना। और नहव की जरूरत किस आदमी को है? जो कलाम अरब का ततब्बो नहीं कर सकता, जो ततब्बो कर सकता है उसको इल्म नहव की कोई हाजत नहीं, वो कलाम अरब से सारी चीजें जान लेगा। तो इल्म नहव का मकसद है इख्तिलाफ आखिर को जानना, और इख्तिलाफ आखिर को जानने के दो तरीके हैं। एक कलाम अरब का ततब्बो किया जाए और दूसरा क्या है? इल्म नहव से सीख लिया जाए। तो इल्म नहव में आसानी से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको कलाम अरब के अंदर साल हर साल लगाने की जरूरत नहीं है। उलमा ने खुद साल हर साल उम्रें लगा दी इसके अंदर और फिर सारे जाब्ते निकालकर आपके सामने नहव में रख दिए। अब आप नहव की किताब उठाते हैं, अल्फाइलु मरफूउन, बस ये जुमला पढ़ा और आपको पता चल गया फाइल पर क्या पढ़ना है, रफा पढ़ना है। तो साहिब जामी फरमा रहे हैं, फिर सुनो, फिर सुनो, वो फरमाते हैं कि इल्म नहव की तदवीन का मकसद, यानी इल्म नहव को जमा करने, मुदवन करने और इसको तरतीब देने का मकसद यह है कि वो शख्स जो कलाम अरबी का ततब्बो नहीं कर सकता वो भी अरबी जुबान के कायदों को जान ले, जाब्तों को जान ले, ताकि उसको इख्तिलाफ आखिर का पता चल जाए कि किस कलीमे का आखिर बदलता है, किसका आखिर नहीं बदलता, मौरब मबनी की उसको पहचान हो जाए नहव के जरिए। तो मौरब के साथ वो मौरब वाला मामला करेगा, उसमें रफा नसब जर के मुताबिक उसमें तब्दीली लाएगा, और मबनी के साथ मबनी वाला मामला करेगा, उसमें इख्तिलाफ आखिर नहीं लेकर आएगा। यह है इल्म नहव का मकसद। और जो अरबी कलाम का ततब्बो करता है उसको इन नहवी कवायद की हाजत नहीं, और जो ततब्बो नहीं कर सकता उसको इन कायदों की हाजत है। तो नहव का मकसद क्या हुआ? इख्तिलाफ आखिर को पहचानना। तवज्जो है, इख्तिलाफ आखिर को पहचानना। भाई जी, अब देखिए किताब पर, देखिए भाई, कहते हैं वह इन नमा अदल अल मुसन्निफ रहिमहुल्लाह अम्मा हुवल मशहूर इंदल जमहूर। मुसन्निफ ने उदूल किया उस तारीफ से जो मशहूर है जमहूर के नजदीक। भाई वो क्या है मशहूर, वो कौन सी तारीफ मशहूर है? अभी भी इबहाम था तो मीन के जरिए उसका बयान कर दिया। मीन अन्नल मुअरब मख्तलफ आखिरहू बिख्तिलाफिल अवामिल, यानी कि मुअरब वो इसम है कि जिसका आखिर बदलता हो इख्तिलाफ अवामिल से। मुअरब वो इसम है जिसका आखिर बदलता हो इख्तिलाफ अवामिल से। अवामिल बदल रहे हैं तो इसम उसका आखिर भी बदल रहा है, उसको मुअरब कहते हैं। यह तारीफ मशहूर है किसके नजदीक? जमहूर के नजदीक। और मुसन्निफ यानी साहिब काफिया ने इससे उदूल किया, इससे रुख को फेर लिया, नई तारीफ कर दी। क्यों? कहते हैं लिअन्नल गरज मिन तदवीन इल्म नहवी, इसलिए क्योंकि वो जो गरज है यानी गरज अहम, भाई अहम गरज जो है इल्म नहव से वो क्या? अय्यारिफ बिही अहवाल अवाखिर अल कलिमति फित तरकीब, किसके जरिए जान ले اواخر کلمہ کے احوال کو, کلموں کے آخر کے احوال کو جان لے کہ آخر کلمہ کے کس طرح کے احوال ہوں گے, کہاں رفع پڑھنا ہے, کہاں نصب اور کہاں جر, فی ترکیب, جب یہ ترکیب میں واقع ہوں. احوال اواخر کلمہ کو جان لے جب یہ کس میں واقع ہوں, ترکیب میں واقع ہوں. بھئی یاد رکھو, علم نحو کی غرض صرف اختلاف آخر کو پہچاننا نہیں ہے, توجہ ہے, علم نحو کی غرض صرف اختلاف آخر کو پہچاننا نہیں ہے, بلکہ اس کی غرض یہ بھی ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ عربی زبان میں کلام کیسے کرتے ہیں, لفظوں کو آپس میں کیسے جوڑتے ہیں, توجہ ہے, جملہ کیسے بناتے ہیں, جار مجرور کو کیسے ملایا جاتا ہے, تو یہ بھی مقصد ہے علم نحو کا. اسی طرح یہ بھی آپ کو پتا چل جائے کس لفظ کو مقدم رکھنا ہے, کس کو مؤخر رکھنا ہے, کس لفظ کو معرفہ لانا ہے, کس کو نکرہ لانا ہے, کس کو موصوف بنانا ہے, کس کو صفت بنانا ہے. تو یہ علم نحو کے یہ صرف یہی مقصد نہیں ہے کہ اختلاف آخر کو پہچان لیا جائے, بلکہ کلام کو جوڑا کیسے جاتا ہے, کلام بنایا کیسے جاتا ہے, کس چیز کو مقدم کرنا ہے, کس کو مؤخر کرنا ہے وغیرہ, یہ سب علم نحو کی اغراض ہیں. لیکن ان میں سب سے اہم غرض کیا ہے, اختلاف آخر کو پہچاننا, کہاں رفع پڑھنا ہے, کہاں نصب اور کہاں جر پڑھنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. تو لئن الغرض, تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ علم نحو کی تو اور بھی غرض ہے صرف اختلاف آخر کو پہچاننا نہیں, تو مراد یہ ہے غرض اہم, بھائی جو اہم غرض ہے, اہم مقصد ہے, وہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں لئن الغرض من تدوین علم النحو, تدوین کا معنی جمع کرنا بھائی, مرتب کرنا, اکٹھا کرنا. لئن الغرض من تدوین علم النحو, اس لیے کیونکہ علم نحو کی تدوین سے جو اثر, جو اہم غرض ہے وہ یہ ہے کہ ان یعرف بہ, کہ اس کے ذریعے جان لے, اس کے ذریعے پہچان لے, کس چیز کو پہچان لے, احوال اواخر الکلمت فی ترکیب, ترکیب میں اواخر کلمہ کے احوال کو, ان کو جان لے کہ ان کے اواخر کو کس طرح پڑھنا ہے. کون پہچان لے, علم نحو کی غرض یہ ہے کہ اس کے ذریعے اواخر کلمہ کو پہچان لے. بھئی کون پہچان لے, آگے فاعل آ رہا ہے, من لم يتتبع لغة العربی ولم يعرف احکامها بالسماع منهم. من لم يتتبع لغة العربی, اواخر کلمہ کے احوال کو پہچان لے, من وہ شخص, لم يتتبع لغة العربی, جس نے لغت عرب کا تتبع نہیں کیا, جس نے لغت عرب میں کوشش اور جستجو نہیں کی, ولم يعرف احکامها, اور جس نے عربی لغت کے احکام کو نہیں جانا, بسماع منهم, عربوں سے سن کر, جس شخص نے عربی زبان میں تلاش و جستجو نہیں کی اور عربوں سے سن کر لغت عربی کے احکام کو نہیں پہچانا, تو وہ کیا کر سکتا ہے, علم نحو کے ذریعے اواخر کلمہ کے احوال کو پہچان سکتا ہے. اور جس نے تتبع کے ذریعے اور سماع کے ذریعے جانا ہے کلام عرب کو, اس کو علم نحو کی کوئی حاجت نہیں ہے. پھر دیکھیے ترجمہ, لأن الغرض من تدوین علم النحو أن يعرف به أحوال أواخر الكلمة في التركيب, اس لیے کیونکہ اہم غرض جو ہے علم نحو کی تدوین سے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے جان لے ترکیب میں اواخر کلمہ کے احوال کو. کون جان لے, من لم يتتبع لغة العربی, وہ شخص جس نے لغت عرب کا, عربی زبان کا تتبع نہیں کیا, ولم يعرف احکامها, اور وہ جس نے عربی زبان کے احکام کو نہیں پہچانا, بسماع منهم, عربوں سے سن کر, یہ ہے کہ وہ پہچان لے, جس نے تلاش اور جستجو نہیں کی وہ اواخر کلمہ کے احوال کو پہچان لے, کس کے ذریعے, علم نحو. بھئی ایک تو وہ ہے جس نے تتبع کیا ہے, وہ تو اسی سے تتبع سے ہی جان لے گا سارا کچھ, اس کو علم نحو کی ضرورت نہیں. تو جس نے تتبع نہیں کیا وہ بھی عربی زبان میں اواخر کلمہ کے احوال کو پہچان لے, کس کے ذریعے, علم نحو کے ذریعے وہ پہچان لے گا. بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ علم نحو کی غرض ہے بھائی, اس کی تدوین کی. فَإِنَّ الْعَارِفَ بِأَحْكَامِهَا, اس لیے کیونکہ وہ شخص جو جاننے والا ہے عربی زبان کے احکام کو, کذالک, اس طریقے پر, کذالک اس طریقے پر, کس طریقے پر, یعنی تتبع اور سماع سے. جو شخص اس طریقے سے عربی زبان کے احکام کو جان لیتا ہے, یعنی تتبع اور جستجو کر کے, कहते हैं मुस्तगनिन अन नहवी, ये वाला शख्स जो है इल्म नहव से बेनियाज है, इसको इल्म नहव की कोई हाजत नहीं है। तर्जमा समझ में आ रहा है, कहते हैं फइन्नल आरिफ बि अहकामिहा कज़ालिका मुस्तगनिन अन नहवी, इसलिए क्योंकि वो शख्स जो अरबी जुबान के अहकाम को पहचानता है, कज़ालिका इस तरह यानी ततब्बु और सिमा से, मुस्तगनिन अन नहवी वो इल्म नहव से बेनियाज है, वला फाइदत लहू मुअतदन बिहा, मेरी किताब में है फी मा फाइदत लहू, ये दुरुस्त नहीं है, वला फाइदत लहू होना चाहिए भाई, वला फाइदत लहू और उस शख्स को कोई फायदा नहीं है, मुअतदन बिहा ऐसा फायदा जो काबिले शुमार भी हो, जो काबिले शुमार भी हो, फी मारिफत इस्तिलाहातिहिम नहवियों की इस्तिलाहात के जानने में। यह शख्स जो कलाम अरब को ततब्बु और सीमा से जान लेता है, ततब्बु और कोशिश और सीमा उनसे सुनकर अरबी जुबान के सारे अहकाम को जान लेता है, इसको इल्म नहव का कोई फायदा नहीं, यानी ऐसा फायदा जो काबिल शुमार भी हो, जो भाई एक आदमी है उसने अरबी जुबान का ततब्बु और सीमा के जरिए उसके अहकाम को जान लिया, अब यह इल्म नहव को पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ फायदा तो होगा, यह तो नहीं हो सकता कुछ भी फायदा ना हो, तवज्जो है, तो वो बतला रहे हैं कि भाई फायदा तो होगा लेकिन ये कोई ऐसा फायदा नहीं है जिसको शुमार भी किया जाए, बड़ा मामूली सा ही कोई फायदा होगा उसको, तो फायदा तो होगा जाहिर सी बात है, उलमा की बातें हैं इसके अंदर, लेकिन ये तो सारे अहकाम कहां से जान चुका है, कलाम अरब से जान चुका है, तो यहां भी उसको कोई ना कोई नई बातें मिल जाएंगी, लेकिन यह कोई ऐसा फायदा नहीं है जो काबिले शुमार हो, यानी काबिले शुमार यानी जो ज्यादा हो, ज्यादा हो जिसको शुमार भी करें कि यह फायदा हुआ है बहुत बड़ा, बल्कि मामूली सा फायदा है जिसको शुमार ही ना करें। जैसे आप किसी के पास गए, किसी के पास गए मसलन आपने उससे, आप उससे चाहते हैं मुझे एक लाख रुपया कर्ज दे दो, किसी जरूरत है, जरूरत है, उसने आपको एक दो हजार रुपए दे दिए, एक दो हजार, आप कर्ज तो कुछ ना कुछ आपको मिल गया लेकिन आप इसको शुमार करते ही नहीं है, कोई आपसे पूछता है हां भाई उसके पास कर्ज लेने गए थे उसने कर्ज दिया, आप कहते नहीं भाई उसने नहीं मुझे कर्ज दिया, ये एक आध हजार की इसको ये तो काबिल शुमार है ही नहीं, मुझे इसका फायदा ही नहीं है, मुझे तो एक लाख रुपए की जरूरत थी, बात समझ में आ गई। तो यहां भी इसी तरह कहा कि उनको इल्म नहव से कोई फायदा नहीं, यानी कि बिल्कुल फायदा ही नहीं है, मां फायदा तो होगा लेकिन वह काबिल शुमार नहीं है, बहुत थोड़ा सा होगा, यह माना है के वला फाइदत लहू मुअतदन बिहा फी मारिफत इस्तिलाहातिहिम, उसको कोई ऐसा फायदा नहीं है जो काबिले शुमार हो, फी मारिफत इस्तिलाहातिहिम उन नहवियों की इस्तिलाहात के जानने में, नहवियों की इस्तिलाहात के जानने में इसको कोई ऐसा फायदा नहीं है जो काबिले शुमार हो यानी ज्यादा हो, बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई। आगे देखिए कहते हैं फल मकसूद मिम मारिफतिल मुअरबी मसलन अन यारिफ अन्नहु मिम्मा यख्तलिफु आखिरुहु फी कलामिहिम लियजअल आखिरहु मुख्तलिफन फयुताबिकु कलामहुम। अब यहां से वही बात करेंगे जो मैंने पहले आपको समझा दी कापी पर, क्या समझाया मैंने कि मुअरब की मारिफत ये आपको हासिल होगी तो फिर इख्तिलाफ आखिर की भी मारिफत, तो मालूम हुआ इख्तिलाफ आखिर की मारिफत वो मौकूफ है किस पर, भाई कापी पे नजर रखें फिर आपको बात समझ में आएगी, मालूम हुआ इख्तिलाफ आखिर की मारिफत वो मौकूफ है किस पर, मौरब की मारिफत पर, और मौरब की मारिफत आपको कब हासिल होगी, मख्तलफ आखिर हो भी इख्तिलाफ अवामिल, जब आपको इख्तिलाफ आखिर की मारिफत हो जाए, तो इख्तिलाफ आखिर की मारिफत मौकूफ हो गए मौरब की मारिफत पर, और मौरब की मारिफत मौकूफ हो गए इख्तिलाफ आखिर पर, तो ये दोनों एक दूसरे पर मौकूफ हो गए, ये तो दौर लाजिम आया, बात समझ में आ गई। इसी बात को साहिब जामी जिक्र करेंगे जरा और गहरे इल्मी रंग में, वो यूं जिक्र करेंगे, इधर देखिए कि मौरब की मारिफत इसके जरिए मकसूद यह है कि आपको यह मारिफत हासिल हो जाए कि मौरब भी उन चीजों में से है जिसका आखिर बदलता है, जिसका हां यूं करें जरा कापी पे लिखें फिर आपको बात समझ में आ जाएगी, लिखें भाई अगली सतर में शुरू में लिखें मारिफतुल मौरब, मारिफतुल मौरब, जी, अब इसके आगे कुछ फासला देकर दूर करके लिखें, मारिफतु मारिफतु अन्नहु अन्नहु मिम्मा मिम्मा यख्तलिफु आखिरुहु। लिख लिया, मारिफतु अन्नहु मिम्मा यख्तलिफु आखिरुहु, मारिफतु अन्नहु मिम्मा यख्तलिफु आखिरुहु। सतर के शुरू में क्या लिखा, मारिफतुल मौरब, और आखिर में क्या लिखा, मारिफतु अन्नहु मिम्मा यख्तलिफु आखिरुहु। अब इस सतर पे जरा नजर रखना, वही तकरीर जो मैंने ऊपर की थी वही तकरीर यहां है। अब साहिब जामी के अल्फाज में साहिब जामी फरमाते हैं कि मौरब की भाई इल्म नह की तदवीन का मकसद क्या है कि इख्तिलाफ आखिर की मारिफत हो जाए। तो मालूम हुआ मौरब की मारिफत से भी क्या हासिल होगी, इख्तिलाफ आखिर की मारिफत। तो लिहाजा देखो अब इस सतर पर नजर रखो, मारिफतुल मौरब, मारिफतुल मौरब, मौरब को पहचानना, इसमें मकसूद क्या है, मकसूद यह है मारिफतु अन्नहु मिम्मा यख्तलिफु आखिरुहु। यह जो मौरब की मारिफत है, यह जो सतर के आपने शुरू में लिखा, इसके जरिए मकसूद यह है, क्या मकसूद है, कि आपको इस बात की मारिफत हासिल हो जाए, वो सतर जो मैंने लिखवाया उस पर नजर रखें, आपको इस बात की मारिफत हासिल हो जाए कि अन्नहु मिम्मा यख्तलिफु आखिरुहु, कि मौरब भी उन चीजों में से है जिसका आखिर बदलता है। मौरब की मारिफत के जरिए मकसूद क्या है, कि आपको इस बात की मारिफत हासिल हो जाए कि मौरब भी उन चीजों में से है जिसका आखिर बदलता है। तो ये जो दरमियान में खाली जगह छोड़ी थी, इसमें छोटा सा लिख लें मकसूद, भाई मकसूद जी, दरमियान में छोटा सा लिख लें मकसूद। लिख लिया जी, अब देखो भाई तवज्जो से सुनो, साहिब जामी तकरीर करेंगे, यहां आपको समझ में आ जाएगा तो तकरीर भी सारी समझ में आ जाएगी। साहिब जामी फरमाते हैं, उस सतर पे नजर रखो कि मारिफत है मौरब, मौरब की मारिफत जो है इसके लिए मकसूद क्या है, इस बात की मारिफत, इस बात, ये लफ्ज दोहराओ, मारिफतु अन्नहु मिम्मा यख्तलिफु आखिरहु, इस बात की मारिफत के मौरब भी उन चीजों में से है जिसका आखिर बदलता है। तवज्जो है, मौरब की मारिफत के जरिए क्या मकसूद है, कि इस बात की पहचान हो जाए कि मौरब भी उन चीजों में से है जिसका आखिर बदलता है। मालूम हुआ यह जो आगे मकसूद आया, मारिफतु अन्नहु मिम्मा यख्तलिफु आखिरहु, इस बात को जानना कि मौरब उन चीजों में से है कि जिसका आखिर बदलता है। तवज्जो है, उन लफ्जों पे नजर है, इस बात की मारिफत के मौरब, मौरब उन चीजों में से है कि उसका आखिर बदलता है, इससे पहले आपको मौरब की मारिफत होनी चाहिए। नहीं बात समझ में आई, देखो देखो फिर देखो, मैंने क्या बताया, फिर जरा उस सतर पे नजर रखो, मौरब की मारिफत इसके जरिए मकसूद क्या है, मौरब की पहचान क्यों मकसद है, क्यों जानना चाहते हैं, ताकि आपको इस बात की मारिफत हासिल हो जाए कि अन्नहु मिम्मा यख्तलिफु आखिरहु, कि मौरब उन चीजों में से है जिसका आखिर बदलता है। यह मौरब की मारिफत के जरिए मकसूद है, जब यह मकसूद है तो मालूम हुआ इस मकसूद से पहले आपको मौरब की मारिफत होनी चाहिए। ये जो आखिर में आया ये है मकसूद, तो इससे पहले आपको क्या हासिल होनी चाहिए, भैया आप मौरब को पहचानते हैं, मकसद क्या है, क्या मकसद है, आप ये जानना चाहते हैं कि मौरब उन चीजों में से है जिसका आखिर बदलता है, मौरब को जानने का मकसद ये है। तो मालूम हो मौरब को जानेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मौरब भी उन चीजों में से है। मकसद बाद में आता है ना, एक चीज के हासिल होने के बाद मकसद हासिल होता है। आप चारपाई पर सोना चाहते हैं, चारपाई पर, तो पहले चारपाई बनाएंगे फिर उसके बाद सोएंगे ना। तो मौरब की मारिफत के जरिए मकसद क्या है, उस सतर पे नजर रखें, इस बात की मारिफत कि मौरब उन चीजों में से है जिसका आखिर बदलता है। तो मालूम हुआ इस मकसद से पहले आपको क्या होना चाहिए, मौरब की मारिफत होनी चाहिए। बात समझ में आ गई, तो मौरब की मारिफत पहले हासिल होनी चाहिए। और अब अगर आप मौरब की आप वो तारीफ करें जो जमहूर ने की थी, अल मौरब मख्तलफ आखिर हो भी इख्तिलाफ अवामिल, उस तारीफ से क्या पता चला कि मौरब भी उन चीजों में से है जिसका आखिर बदलता है। मौरब की तारीफ से आपको क्या पता चला, मौरब उन चीजों में से है जिनका आखिर बदलता है, मख्तलफ आखिर हो भी इख्तिलाफ अवामिल, आपने तारीफ ही यह की है। तो मौरब की तारीफ के जरिए मकसूद क्या था, इस बात की मारिफत हासिल हो जाए मौरब उन चीजों में से है जिसका आखिर बदलता है। तो मालूम हुआ इस मकसद से पहले आपको मौरब की मारिफत होनी चाहिए। और मौरब की तारीफ तो क्या की, वो जमहूर वाली मख्तलफ आखिर इख्तलाफ अवामी कि मौरब भी उन चीजों में से है जिनका आखिर बदलता है। तो लिहाजा जो मारिफत मौरब आपने लिखा है इसके नीचे लिख दें, बल्कि यूं लिखें अल मौरब मिम्मा यख्तलिफ आखिरहु। लिख लिया, तवज्जो है, अल मौरब मिम्मा यख्तलिफ, यही तारीफ की ना, मख्तलफ आखिर भी इख्तलाफ अवामिल। मौरब किसको कहते हैं कि जिसका आखिर इख्तलाफ अवामिल से बदलता हो। तो मौरब के जरिए मकसूद भी यह था कि पता चल जाए कि यह उन चीजों में से है जिनका आखिर बदलता है, और मौरब की तारीफ भी यह कर दी कि मौरब उन चीजों में से है जिसका आखिर बदलता है। तो देखो यह दौर लाजिम आया, मालूम हुआ यह जो मकसूद है, जरा इस पर नजर रखो, यह मकसद आपको तब हासिल होगा जब आपको मौरब की पहचान होगी। और मौरब की पहचान कब होगी, जब आपको यह पता चल जाए कि मौरब किस में से है, उन चीजों में से है जिनका आखिर बदलता है। तो ये देखो ये जो मकसद है इस पर मकसद ही मुकद्दम हो गया, वही मकसद मुकद्दम भी हो गया। मारिफत अन्नहु मिम्मा यख्तलिफु आखिरहु, मकसूद क्या था मौरब के जरिए कि उन चीजों में से जिसका आखिर और जी, तो इससे पहले आपको क्या होनी चाहिए, और मौरब की मारिफत भी किससे होगी, जब यह पता चल जाए कि मौरब उन चीजों में से है जिनका आखिर बदलता है। तो वही मकसद अपने से पहले हो गया, मकसद से पहले आपको मकसद को जानना पड़ेगा, फिर आपको मकसद समझ में आएगा। बात समझ में आ गई, यह है दौर भाई, एक चीज अपने ही ऊपर मौकूफ हो गई। तो इसको कहते हैं तकद्दुम शय अला नफ्सी ही, एक चीज अपनी ही जात पर मुकद्दम हो गई। मकसद क्या था, मारिफत अन्नहु मिम्मा यख्तलिफु आखिरहु, और मौरब की मारिफत भी किससे हो रही है, अन्नहु मिम्मा यख्तलिफु आखिरहु। तो अन्नहु मिम्मा यख्तलिफु आखिरहु इसका पता आपको तब चलेगा जब इससे पहले आपको यह पता चल जाए अन्नहु मिम्मा यख्तलिफु आखिरहु। तो एक शय अपनी ही जात पर मुकद्दम हो गई, उसी को पहले जानोगे तो फिर इस शय को जानोगे। तो यह दौर लाजिम आया, बात समझ में आ गई अच्छी तरह। देखिए भाई किताब पर कहते हैं फल मकसूद मिन मारिफतिल मौरबी मसलन, तो मकसूद जो है मौरब की मारिफत के जरिए मिसाल के तौर पर वो ये है कि अय्यारिफा, कि ये जान ले कि अन्नहु मिम्मा यख्तलिफु आखिरहु, कि मौरब उन चीजों में से है जिसका आखिर बदलता है। मौरब की मारिफत से मकसूद ये है, क्या मकसूद है, अय्यारिफा, वही जो मैंने अभी आपको लिखवाया था कॉपी पर, अय्यारिफा अन्नहु मिम्मा यख्तलिफु आखिरहु, कि मौरब उन चीजों में से है जिनका आखिर बदलता है। फी कलामिहिम, किस में, अरबों के कलाम में, लियजअला आखिरहु, ताकि ये जो जानने वाला है, ताकि ये लियजअला आखिरहु मुख्तलिफन, ताकि ये भी अपने कलाम के अंदर मुआरब के आखिर को उसी तरह बदल दे। फयुताबिकु कलामहुम, तो फिर इसका कलाम भी अरबों के कलाम जैसा हो जाएगा। इधर देखिए मुआरब की मारिफत के जरिए मकसूद यह है कि यह जान लिया जाए कि मुआरब भी उन चीजों में से है कि जिनका आखिर बदलता है, ताकि ये शख्स जब ये शख्स कलाम अरबी कलाम करे तो उसी के मुताबिक मौरब में तब्दीली लेकर आए, ताकि इसका जो कलाम है, इसकी जो अरबी है, वो अरबों के कलाम के मुताबिक हो जाए। फमारिफतुहु मुतकद्दिमतुन, तो मालूम हुआ मौरब की जो मारिफत है वो मुकद्दम है, वो पहले होनी चाहिए। मौरब की मारिफत होगी तो मौरब की मारिफत के लिए गरज क्या है, वो कापी पर नजर रखें, इस बात की मारिफत कि अन्नहु मिम्मा यख्तलिफु, कि यह भी उन चीजों में से है जिनका आखिर बदल। मालूम हुआ इससे पहले यह जो मकसद है, मकसद से पहले आपको किसकी मारिफत होनी चाहिए, मौरब की मारिफत पहले होनी चाहिए, क्योंकि मौरब की मारिफत इसके जरिए यह मकसूद है। तो मौरब की मारिफत होगी तो फिर मकसूद भी हासिल होगा। तो कहते हैं फमारिफतुहु मुतकद्दिमतुन, तो लिहाजा मौरब की जो मारिफत है वो मुकद्दम होगी, अला मारिफती अन्नहु मिम्मा यख्तलिफु आखिरहु, इस बात की मारिफत पर कि ये मौरब उन चीजों में से है जिसका आखिर बदलता है। फलौ कान मारिफतुहुल मुतकद्दिमतु हासिलतन बिमारिफती हाजल इख्तिलाफी, अगर मौरब की मारिफत वो जो मुकद्दम है, मौरब की मारिफत जो مقدم ہے جو پہلے ہونی چاہیے. اگر وہ بھی حاصل ہو رہی ہے بھی معرفتی حاضر الاختلافی, وہ بھی اسی اختلاف کی معرفت سے. مقصد کیا؟ معرفت انہو مما یختلف آخرہ, اس سے پہلے کس کی معرفت ہونی چاہیے؟ معرب کی معرفت. اور معرب کی معرفت اگر آپ اس کی تعریف بھی آپ یہی کر دیں کہ انہو مما یختلف آخرہ, معرب بھی ان چیزوں میں سے جس کا آخر, تو معرب کا جاننا موقوف ہو گیا کس پر؟ انہو مما یختلف آخرہ پر. انہو مما یختلف آخرہ اس کی معرفت کس پر موقوف تھی؟ معرب کی معرفت پر. اور معرب کی معرفت کس پر موقوف ہو گئے؟ انہو مما یختلف آخرہ. تو کہتے ہیں فلو کان معرفته المتقدمه, اگر معرب کی وہ معرفت جو مقدم ہے وہ حاصلتن, وہ حاصل ہو بمعرفت ہذا الاختلاف, اسی اختلاف کی معرفت سے, اس کی بھی یہی تعریف کی جائے کہ انہو مما یختلف آخرہ, اس کی اختلاف کے ساتھ معرب کی تعریف کی جائے, اس سے اس کی پہچان ہو, وہ تعریف ہو بھی, اور اس کے ساتھ اس کی تعریف کی جائے, تو وجب, تو واجب ہوگا, واجب ہوگا ان یعرف اولا, کہ پہلے معرب کی یہ تعریف کی جائے. توجہ ہے, انہو مما یختلف آخرہ یہ ہے مقصود, اس مقصود سے پہلے کس کو جاننا ضروری؟ معرب کو. اور معرب کی کیا تعریف کی؟ کہ انہو مما, تو انہو مما یختلف آخرہ اس کو جاننا موقوف ہوا معرب کی معرفت پر, اور معرب کی معرفت وہ موقوف ہوا کس پر؟ کہ انہو مما یختلف آخرہ پر. تو وجب, تو واجب ہوا ان یعرف اولا, کہ پہلے معرب کی تعریف کی جائے, بھی انہو مما یختلف آخرہ, کہ معرب ان چیزوں میں سے ہے جس کا آخر بدلتا ہے. پہلے یہ تعریف معرب کی جائے, کس لیے کی جائے؟ لیو عرفا, تاکہ یہ جان لیا جائے انہو مما یختلف آخرہ, کہ معرب بھی ان چیزوں میں سے ہے جن کا آخر بدلتا ہے. فیلزم تقدم شیء علی نفسہ, تو لازم آیا ایک شے کا مقدم ہونا اپنی ذات پر. ایک شے کا, بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ پھر سن لو ایک دفعہ, معرب کی معرفت سے مقصد کیا ہے آپ کو کیا پتا چل جائے؟ انہو مما یختلف آخرہ, معرب ان چیزوں میں سے ہے جن کا آخر بدل, تو انہو مما یختلف آخرہ اس کا پتا آپ کو تب چلے گا جب آپ کو معرب کی معرفت حاصل ہوگی, اور معرب کی تعریف بھی یہی کر دی کہ انہو مما یختلف آخرہ, تو معرب کا پتا کب چلے گا؟ جب آپ کو یہ پتا چل جائے انہو مما یختلف آخرہ. تو انہو یختلف آخرہ یہ معرب کا مقصود بھی ہو گیا اور یہ معرب کی تعریف بھی ہو گئی, تو دونوں جگہ گویا یہی آ گیا. بات سمجھ میں آئی؟ بھئی دیکھو, کاپی پہ نظر رکھو گے پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. معرب کی معرفت ضروری ہے, جب معرب کی معرفت ہوگی تو کیا حاصل ہوگا؟ پتا چل جائے گا کہ انہو مما یختلف آخر, یہ معرب کے ذریعے مقصود ہے, اور معلوم ہوا اس مقصود سے پہلے معرب کی آپ کو معرفت حاصل ہونی چاہیے. یہ مقصود, یہ موقوف ہے معرب کی معرفت پر. اور معرب کی معرفت کب حاصل ہوگی؟ معرب کی تعریف کیا کی؟ انہو مما, تو معرب کا دار و مدار کس پر, معرب کس پر موقوف ہو گیا؟ انہو مما یختلف آخرہ. تو معرب کی معرفت اس لفظ کو ذرا ہٹا دو, اس کی جگہ رکھ دو انہو مما یختلف آخرہ. تو دیکھو مقصود بھی یہی, مقصود بھی یہی کہ انہو مما یختلف آخرہ, اور اس کا پتہ بھی تب چلے گا جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ انہو مما یختلف آخرہ. تو ایک شے اپنی ہی ذات پر مقدم ہو گئی, مقصود سے پہلے جو معرب کی معرفت تھی وہ بھی کیا ہے, اس کی جگہ پر بھی کیا آ گیا, انہو مما یختلف آخرہ. تو ایک شے اپنی ہی ذات پر مقدم ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا پھر دیکھو, تو کہتے ہیں فمعرفته متقدمۃ علی معرفت انہ مما یختلف آخرہ, تو معرب کی جو معرفت ہے وہ مقدم ہوگی اس بات کی معرفت پر کہ انہ مما یختلف آخرہ, کہ معرب ان چیزوں میں سے ہے جن کا آخر بدلتا ہے. فلو کان معرفته المتقدمۃ, اگر معرب کی وہ معرفت, وہ پہچان جو پہلے ہے, یعنی پہلے حاصل ہونی چاہیے, پہلے حاصل ہونی چاہیے پھر ہی مقصد حاصل ہوگا نا, تو معرب کی وہ معرفت جو مقدم ہے, حاصلتن بمعرفت ہذا الاختلاف, اگر اس کی پہچان بھی اسی اختلاف کی پہچان پر ہو, वह तारीफ हु भी अई व तारीफ हु हासिलन भी, और उसकी तारीफ भी इसी के जरिए हासिल हो कि अन्नहु मिम्मा यख्तलिफ हो आखिर हो, उसकी तारीफ भी यही कर दी जाए। तो वजब अन युअर्रफ अव्वलन, तो वाजिब होगा कि पहले मौरब की यह तारीफ की जाए। एक है मकसूद, मकसूद से पहले मौरब का जानना जरूरी, तो मकसूद से पहले ये मौरब की यह तारीफ करना पड़ेगी। क्या तारीफ करना पड़ेगी? कि भी अन्नहु मिम्मा यख्तलिफु आखिरहु, कि मौरब उन चीजों में से है जिसका आखिर बदलता है। यह तारीफ पहले करना पड़ेगी। क्यों पहले करना पड़ेगी? लियो आरफा, ताकि वो मकसूद को जान लिया जाए। और मकसूद क्या वो जिक्र कर रहे हैं? लियो आरफा अन्नहु मिम्मा यख्तलिफु आखिरहु, ताकि यह जान लिया जाए कि मौरब उन चीजों में से है जिसका आखिर बदलता है। तवज्जो है? तो मकसूद भी यही मिम्मा यख्तलिफु आखिरहु, और इससे पहले यही जानना जरूरी कि अन्नहु मिम्मा यख्तलिफु आखिरहु, एक चीज अपनी ही जात पर क्या हो गई? मुकद्दम हो गई। क्योंकि अन्नहु मिम्मा यख्तलिफु आखिरहु, इसका दारोमदार किस पर? मौरब की मारिफत पर। और मौरब की मारिफत कब होगी? जब आपको ये उसकी तारीफ क्या की, मख्तलफ आखिरहु बिख्तिलाफिल, अब यह पता चल जाए कि मौरब भी किस में से है, मख्तलफ आखिरहु बिख्तिलाफिल अवामिल, तो अन्नहु मिम्मा यख्तलिफु आखिरहु ये अपनी ही जात पर मुकद्दम हो गया। अपनी जात से पहले इसको जानना जरूरी। फयल्ज़मु तक़द्दुमु शैई अला नफ़सिही, तो लाजिम आया एक शय का अपनी जात पर मुकद्दम होना। और याद रखो ये बातिल है। ये क्या है? बातिल है। एक शय अपनी जात पर मुकद्दम नहीं हो सकती। जैद जैद पर मुकद्दम नहीं हो सकता, जैद अमर बकर खालिद पर तो मुकद्दम हो सकता है, अपनी ही जात पर मुकद्दम नहीं हो सकता। क्योंकि तकद्दुम के लिए मुगायरत चाहिए, एक चीज दूसरी चीज पर मुकद्दम है, मालूम हो दोनों अलग अलग हैं, तो एक ही चीज अपनी ही जात पर मुकद्दम नहीं हो सकती। बात समझ भी आ रही है कि नहीं? फयम बगी अन युअर्रफ अव्वलन बिगैरि मा अर्रफहु बिहिल जमहूर, तो मुनासिब यह है कि मौरब की तारीफ की जाए अव्वलन पहले, बिगैरि मा अर्रफहु बिहिल जमहूर, बगैर उस तारीफ के जिसके साथ जमहूर ने तारीफ की है, इलावा उस तारीफ के। अन्नहु मिम्मा यख्तलिफु आखिरहु, इससे पहले क्या जरूरी? मौरब की मारिफत जरूरी, तो मौरब की मारिफत भी अन्नहु मिम्मा यख्तलिफुहु से न करो, कोई और तारीफ करो, वरना अगर उसी से करोगे तो फिर तो तकद्दुमु शय अला नफ्सी ही लाजिम आएगा। तो फयम बगी, मुनासिब यह है, अन युअर्रफ अव्वलन, कि पहले मौरब की तारीफ की जाए, बिगैर मा अर्रफहु बिहिल जमहूर, बगैर उस तारीफ के साथ जिसके साथ जमहूर ने उसको की तारीफ की है, बगैर उन लफ्जों के जिसके साथ जमहूर ने उसकी तारीफ की है। वयुजअल मा अर्रफूहु बिही मिन जुमलति अहकामिही, इसका अतफ युअर्रफा पर है और उस पर अन दाखिल था, तो इस पर भी अन दाखिल होगा। व अन युजअल, और कर दिया जाए, मा अर्रफूहु बिही, वो जिसके साथ, जिन लफ्जों के साथ जमहूर ने उसकी तारीफ की है, मिन जुमलति अहकामिही, उसके जुमला अहकाम में से। भाई देखिए, मौरब की तारीफ उन लफ्जों के साथ न करो जिनके साथ जमहूर ने तारीफ की है, वरना तो क्या लाजिम आएगा? तकद्दुमु शय अला नफ्सी ही लाजिम आएगा, या यूं कहो दौर लाजिम आएगा। भाई क्या लाजिम आएगा? दौर लाजिम आएगा। लिहाजा मुनासिब यह है कि मौरब की कोई और तारीफ की जाए, वो जमहूर वाली तारीफ न की जाए, और वो जो जमहूर ने तारीफ की है उसको मौरब का हुक्म करार दे दिया जाए। मौरब का हुक्म करार दे दिया जाए कि मौरब का हुक्म यह है कि यह उन चीजों में से है जिसका आखिर बदलता है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वयुजअलमा अर्रफूहु बिही मिन जुमलती अहकामिही, और करार दे दिया जाए वो जिसके साथ जमहूर ने उसकी तारीफ की है, उसको करार दिया जाए, उसको बना दिया जाए, मिन जुमलती अहकामिही, मौरब के जुमला अहकाम में से, मौरब के जुमला अहकाम में से उसको एक हुक्म बना दिया जाए। कमा फ़अलहुल मुसन्निफ रहिमहुल्लाह, जैसे कि मुसन्निफ रहिमहुल्लाह ने किया है। देखो आगे मतन मतन जरा देखो, व हुक्मुहु अन यख्तलिफ आखिरहु बिख्तिलाफिल अवामिल, और मौरब का हुक्म यह है कि उसका आखिर बदलता है अवामिल के बदलने से। देखो जमहूर ने जो तारीफ की थी मौरब की, मुसन्निफ ने क्या कर दिया? उसको मौरब का हुक्म बना दिया। उसका हुक्म यह है भाई, उसका हुक्म यह है, क्योंकि अगर मौरब की वो तारीफ करोगे तो तकद्दुमु शय अला नफ्सी ही लाजिम आएगा। भाई बात समझ में आ गई? चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।